यतीम है उनको नहीं देते, बेवा है उनको नहीं देते। और एक पिछले दिनों मेरे एक स्टूडेंट का फोन था कि हमारा अबू जो है वो अबू अगर बाप फौत हो और बेटा उसके बाद फौत हो तो बेटे को विरासत में हिस्सा मिलता है ना। तो लेकिन हमारे घर वाले मेरे भाई ये जो है वो यानी अब जरा वक्त गुजर जाता है तो लोग भूल भुला भी जाते हैं, और वैसे भी अब वो बेटा तो है नहीं, अब उसका हिस्सा नहीं, तो उसकी औलाद को हिस्सा फिर नहीं दे रहे ना, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर उसको जो भी मुझे समझ में आया समझाया, और वेबसाइट पे हमारी एक सीडी भी है, और वैसे भी सीडी बनी हुई है विरासत के ऊपर, आप बड़ी तफसील से है, आप उसको सुन सकते हैं। और विरासत के बारे में ये आता है कि कुर्बे कयामत की निशानियों में से है कि विरासत का इन दुनिया से उठा लिया जाएगा। और याद रखें कि ये जो दौलत है ना जिसके पास, तो अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान है। अल्लाह ताला का निजाम क्या है कि अल्लाह दौलत को तकसीम करता है, गर्दिश में रखना चाहता है, वरना कुछ लोग अमीर से अमीर होते चले जाते और गरीब गरीब से गरीब होते चले जाते। तो दौलत का ये जो जकात का सिस्टम है, ये भी किसी एक को अमीर नहीं रहने देता ना, अगर आप सही तरीके से जकात निकालते हैं। इसी तरह विरासत की तकसीम में वो दौलत तकसीम हो जाती है। तो इस्लाम का निजाम दौलत की गर्दिश का निजाम है। हमारा जो भी निजाम है जिसमें जकात है, विरासत है, इन्फाक है, ये चीजें वताकुलूना तुरासा अक्लन लम्मा, तो यहाँ पे ये बात भी आपको समझ में आ गई। और अक्लन लम्मा, अक्लन का मतलब है कि खाना, और लम्मा लम्मा जो है इसके मानी है कि समेट समेट कर खाना, खूब खाना। तो ये लम का लफ्ज जमा करने और समेटने के लिए आता है, और यहाँ पे हड़प कर गए यानी पूरा जमा किया, पूरा निवाला बना के। तो अकलन लपे समेटना, जमा करना। व तुहिब्बून अल माला हुब्बन जमा, ये जो तीन बताई ना, यतीम, मिस्कीन और विरासत, ये जो चौथी आयत है इनका निचोड़ है। तो करते क्यों, व तुहिब्बून अल माला हुब्बन जमा, और माल की मोहब्बत में तुम बुरी तरह गिरफ्तार हो। हुब मोहब्बत को जमा के मानी क्या, जीम मीम मीम, किसी भी चीज की कसीर मिकदार का एक जगह जमा होना। जैसे कुएं का पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ हो और फिर जम्मल मिकियाल पैमाने को चोटी तक जो है वो भर लिया जाए, उस वक्त भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो और माल की मोहब्बत में बुरी तरह तुम जो हो गिरफ्तार हो, हलाल हराम की तमीज नहीं, दूसरों के हकूक की फिक्र नहीं, बस अपनी फिक्र है, तो यहाँ पे इससे जो है मना किया गया है। तो ये जो चार आयतें हैं ये हमारी इखलाकी हालत को जाहिर करती हैं। हम सोसाइटी घरों से बनती है, घर खानदानों से बनते हैं। हमें हमें अपने खानदान में देखना चाहिए कि मेरा मामला कैसा है, अपने घर के अंदर देखना चाहिए। यतीम मिस्कीन और विरासत में क्या आपने नंदों को उनका हिस्सा दिया, आपके खानदान में कोई यतीम है, बेवा है, क्या आपने उनके साथ सुलूक किया। अच्छा, हो सकता है, मुझे एक मिसाल बहुत अच्छी लगी किसी की, कि घर में बाकी लोग विरासत में बहनों को हिस्सा नहीं देने जा रहे। जैसे मेरी दोस्त, मतलब हम अपने ही घर की या किसी की मिसाल समझ लें कि बाकी भाई हिस्सा नहीं देना चाह रहे, तो उनके शौहर ने क्या किया, उन्होंने जो बाप फौत हो गया पूरी विरासत का एक हिसाब लगा के कहा कि इतना मुझे मिलता है और मेरे माल में मेरे बहनों का इतना आता है, उन्होंने निकाल कर अपनी बहनों को दे दिया। ठीक है, फिर आप लोगों की जिम्मेदारी और मैं अल्लाह के यहाँ जो है सुरखुरू हो जाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है। तो ये है तकवा की बातें। अच्छा, आगे चलते हैं, आखिरी आयात हैं, आयत नंबर 21 से लेकर और आयत नंबर 26 तक। बड़ी सख्त आयतें हैं, बहुत ही जो है हौलनाक आयतें हैं। और अल्लाह ताला जो है जैसे गफलत की जिंदगी पर पानी के छींटे डालते हैं कि तुम क्या समझते हो कि कभी मुहासबे का वक्त ही नहीं आएगा, कभी कयामत ही नहीं आएगी। कल्ला इजा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान वअन्ना लहु ज़िक्रा। हरगिज नहीं जब जमीन पै दर पै कूट कर रेगजार बना दी जाएगी। दुख का जो है ना, दाल काफ काफ, इसका मतलब होता है जैसे पहाड़ है, टीला है, पत्थर है, उसको मार मार कर बारीक कर दिया जाए, रेत बना दिया जाए, ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जमीन की हर चीज को तोड़ तोड़ कर नशेबो फराज को बराबर कर दिया जाएगा। दुख कतिल अर्दु दक्कन दक्का, मफूले मुतलिक है ये, ताकीद के लिए फिर दक्कन दक्का जो है वो आया है। तो ये दुनिया का कायनात का निजाम जो है ये खत्म हो जाएगा। फिर फरमाया वजा रब्बू का, फिर तेरा रब आएगा, वल मलकू और फरिश्ते जो अल्लाह की फौज है, सफन सफा और सफ में डिसिप्लिन में, और फिर सफों की सफे होंगी। तो ये जो है ना, ये जो आयत का हिस्सा, इसमें मिसाल के जरिए अल्लाह की कहारियत, उसके इक्तदार जो है उसको पेश किया गया है कि अल्लाह का इक्तदार कैसा होगा। अपने लश्करों के साथ आएगा, अल्लाह के लश्कर, अल्लाह की पुलिस, अल्लाह के सिपाही, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के साथ होंगे। दुनिया के जब बादशाह आते हैं तो दरबार पर एक रोब तारी हो जाता है, तो अल्लाह का जब बादशाह आएगा तो अल्लाह जो खुद बादशाह है, जो मुक्तदर है, जब वो आएगा तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ होंगे। सोचो तो सही, कहते हैं कि वो एक बादशाह थे और उनके सामने ऐसी आयात की तिलावत की गई कि जिसमें अल्लाह की बादशाहत का जिक्र था, और बड़ा सोच था, बड़ा मजमा लगा था, और वो स्टेज से उतर गए, उन्होंने अपने सर पर वो जो ताज पहना था उसको उतार कर नीचे रखकर फिर कहा कि या रब बादशाही तेरी ही है। और हकीकत यही है कि असल बादशाही अल्लाह की बादशाही है। और फिर उस दिन जहन्नुम को जो है वो लाया जाएगा। यहाँ पे जहन्नुम को जो है वो उसका खास जिक्र है, और जहन्नुम का क्यों ऐसे जिक्र है कि जहन्नुम को उस दिन लाया जाएगा। कहीं कुरान में आता है कि वह बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, कि जहन्नुम हर देखने वाली आंख के सामने खोल कर रख दी जाएगी। अच्छा, जहन्नुम को जो लाया जाएगा, तो जहन्नुम का थोड़ा सा तारुफ मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। कुरान में कई आयात आप इस सिलसिले में पढ़ चुकी हैं, बस एक दो हदीसें इस वक्त मैं आपको सुना देती हूँ जहन्नुम के बारे में। कि जहन्नुम जो है, इसके बारे में एक तो हमें ये पता चलता है कि जहन्नुम के कई दर्जात हैं, बहुत से दर्जे हैं। जैसे जहाज में आप सफर करते हैं तो एक जो है वो बिजनेस क्लास होती है, एक फर्स्ट क्लास होती है, और फिर एक थर्ड या इकोनॉमी क्लास होती है। तो जहन्नुम के भी डिफरेंट दर्जात हैं जो उनके गुनाहों के मुताबिक हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जहन्नुम बड़ी वसी है, बड़ी वुसअत वाली है और बहुत गहरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कोई ऐसी बात जबान से कह देता है जिसकी वजह से वो जहन्नुम में जमीनों आसमान की दरमियानी फासले से भी नीचे चला जाता है, जमीनों आसमान के दरमियानी फासले से भी ज्यादा चला जाता है जहन्नुम के अंदर, यानी वो इतनी गहरी है जहन्नुम। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जहन्नुम की जो जैसे उसकी वुसअत कि वो कितनी है, उसकी चार दीवारी जो है इतनी, ऐसी चार दीवारी पर मुश्तमिल है कि हर दीवार के दरमियान 40 साल का सफर है, ट्रेवलिंग है। 40 साल लगते हैं उस तरफ पहुंचने में। और ये जो हदीस है इसकी रवायत भी सही है। और एक और हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जो है कि कहा कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जहन्नुम कितनी वसी है, तो हजरत मुजाहिद कहते हैं मैंने कहा कि हाँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं वल्लाह की कसम तुम नहीं जानते, सुनो जहन्नुम के कान की जहन्नुम जो है वो जहन्नुमी के कान की लूप से लेकर कंधे तक 70 साल की मुसाफत का फासला होगा। जहन्नुमी के कान की लू से लेकर कंधे तक, यहां से लेकर यहां तक 70 साल की मुसाफत का फासला होगा, जिसके दरमियान पीप और खून की वादियां बह रही होंगी। मैंने इस किया क्या नहरें बहेंगी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं, बल्कि वादियां नहरों से ज्यादा वसी होती हैं, दो पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है। और वो हदीस आप सुनी चुके हैं कि जब मैदान हशर में जहन्नुम को लाया जाएगा तो इसकी 70,000 बागें होंगी और हर बाग को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। और भी इसकी गहराई और हौलनाकी और बहुत सी बातें, तो उस दिन जहन्नुम को 70,000 फरिश्ते पकड़कर उसकी लगामों से उसको ला रहे होंगे, क्योंकि वो कहेगी हल में मजीद और आग दहक रही होगी। और बहुत से इसके मनाजिर हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, और हम जहन्नुम से अल्लाह की पनाह में आते हैं। फिर फरमाया उस दिन इंसान को समझ आएगी। क्यों समझ आएगी उस दिन इंसान को? सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद होंगे, सामने जहन्नुम पूरी हौलनाकियों से दहक रही होगी, और इंसान का अपना नामा अमाल होगा, और उस वक्त इंसान थर थर कांप रहा होगा, डर रहा होगा, रो रहा होगा, सोच रहा होगा अब क्या करूं। वह अन्ना लाहु ज़िक्रा, अब उसके डरने का क्या हासिल। यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, वो कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। फयौमाइज़ ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहू अहद, फिर उस दिन अल्लाह जो अजाब देगा वैसा अजाब देने वाला और कोई नहीं। वला युसिकु वसाक़हू अहद, पर अल्लाह जैसा बांधेगा वैसा बांधने वाला कोई नहीं। मेरी प्यारी बहनों, ये आयतें जो हैं, ये मुझे और आपको अपने मुहासबे की दावत देती हैं, अपने रवैयों को बदलने की तलकीन करती हैं। ये हौलनाकी के जितने मनाजिर हैं, और अल्लाह का मौजूद होकर हिसाब किताब करना, और अल्लाह के फरिश्ते भी, तो अल्लाह फिर ऐसा बांधेगा जैसा बांधने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह ऐसा अजाब देगा जैसा अजाब देने वाला और कोई नहीं है। तो ये सब क्या बताता है कि आइए हम एक नई जिंदगी की इब्तदा करें, आइए गुनाहों भरी जिंदगी को खुदा हाफिज कह दें, आइए वो गठरियां जो हमने गुनाहों से भरकर अपने कंधों पे उठा रखी हैं, आइए उनको उतार फेंके, सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार करके, और हर वक्त डरते सहमते रोते और अपना मुहासबा करते हुए अपने आप को नेक और अच्छा मुसलमान बनाएं। हाय वो लोग थे, कैसे वो लोग थे, छोड़ दी जिंदगी बंदगी के लिए, एक तू भी तो है एक मैं भी तो हूँ, हाय अफसोस हूँ छोड़ दी बंदगी जिंदगी के लिए। और इलामा इकबाल के ये अशआर मुझे बहुत पसंद हैं। ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दोनों ही इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हम ना दुनिया की बातों से उनके रवैयों से बेनियाज हो जाएं। एक ही अमल का असूल हम एटलीस्ट ले लें आज के दिन, कि कुछ लोग कहते रहें, मजाक करते रहें, हमारे साथ अच्छा सलूक ना करें, हमें सलाम ना करें, हमारी नेकियों का बदला ना दें, हमें स्माइल ना दें। हमें ये असूल लेना है कि मुझे एक अच्छा मुसलमान बनना है। ये फिक्र नहीं करनी कि किसी ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये फिक्र हमारी रीत नहीं क्या खोया है क्या पाएंगे, ये इश्क है कारोबार नहीं, क्यों सूदो ज़िया की बात करें। तो फिर हमें लोग कुछ भी कहेंगे ना, यानी उनका कसूर होता है, हमें पता होता है इनका कसूर है, वो कुछ भी कहेंगे आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि और अल्लाह से दुआ भी मांगा करें कि अल्लाह ताला मुझे दूसरों के रवैयों से बेनियाज कर दे। बहुत दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला मेरा दिल नफ्से मुतमईना बनाकर दूसरों के रवैयों से मुझे बेनियाज कर दे। जब आप दूसरों के रवैयों से बेनियाज हो जाएंगे ना, शौहर ने ये कह दिया, शौहर सुनता नहीं है, देखता नहीं है, मेरे फराइज अदा नहीं करता, उसको मेरी कदर ही नहीं है, मेरी बातों का जवाब नहीं देता, मेरी सास ने ये कर दिया, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तन्हा हूं, मैं अकेली हूं, अल्लाह मेरा दोस्त है। हसबुनल्लाहु निमल वकील व निमल मौला व निमल नसीर। आग में जब कूदे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ये दुआ पढ़ रहे थे, ग़ज़वा बदर की मुश्किल रात में सारी रात रसूल अल्लाह ये दुआ पढ़ते रहे। तो ये दौर बहुत मुश्किल दौर है, और मेरा और आपका वकील, मेरा और आपका दोस्त अल्लाह है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी, फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फि दुनिया वल आखिरा, बहुत पसंद है मुझे ये दुआ, अंत वली फि दुनिया वल आखिरा तो फनी मुस्लिम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। आखिरी आयात बहुत ही खूबसूरत आयात हैं, बहुत ही पसंदीदा आयात हैं, और ये हम दुआ करते हैं हमें इन लोगों में अल्लाह रब्बुल इज्जत शामिल कर ले। तीन तरह के नफ्स हैं, एक नफ्स अम्मारा जो गुनाहों की दावत देता है, एक नफ्स लवामा जो कि जमीर है, जो कि इंसान को अच्छा काम करने पर खुश इंसान होता है और बुरा काम करने पर मलामत करता है, आप गिल्टी फील करते हैं, गिल्ट। ए दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए कि जिंदगी इबारत, जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। और इधर उधर की तू बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है ना। तो असल बात क्या है कि जब जमीर जिंदा होता है तो बहुत उम्मीद होती है कि इंसान नफ्से मुतमईना बन जाएगा। जब जमीर मर जाता है तो नेकियां करने पर खुशी नहीं होती और गुनाह करने पर अफसोस नहीं होता। और उम्मत मुस्लिमा का जब ये हाल हो जाए या किसी भी कौम का जब ये हाल हो जाए तो कौम जो है वो जवाल की तरफ जानी शुरू हो जाती है। और आज देखें उम्मत मुस्लिमा के हालात देख लें। आखिरी आयात क्या है, और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि हम, हमारे अमल तो ऐसे नहीं हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, तेरी रहमत हमारे गुनाहों से बढ़कर वसी है, तू हमारे गुनाह माफ करके अपनी वसी रहमत में हमें ढांप कर हमें इसमें शामिल कर ले। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, इर्जिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फिर अल्लाह ताला जो नेक लोग हैं उनको कहेगा, ए नफ्से मुतमईन, अन्नफ्सुल मुतमईना। पता है आपको नफ्से मुतमईन किसे कहते हैं? मुफस्सरीन ने ये जो अल मुतमईना है इसका रूट ये बताया, इसके मानी ये बताए कि ये जो मोमबत्ती जब जलती है उसकी लौ जो है ना वो स्टेबल हो, ऐसे ऐसे ना हिले, इधर उधर को ना हो। और आम तौर पे मोमबत्ती की लौ जो है वो हरकत करती रहती है। तो इसी से फिर इसके वो मानी बयान करते हैं। मुझे बड़ा इस चीज ने मुतासिर किया जब मैंने इस पर गौर किया कि जिसने नफ्से मुतमईन वो है जिसने शक और किसी भी शक और शुबे के बगैर पूरे इत्मीनान और ठंडे दिल से अल्लाह को अपना रब माना, फिर शक ना किया उस पर, दीन हक को अपना दीन करार दिया, अल्लाह के रसूल को अपना रोल मॉडल बनाया, फिर फिल्मी एक्टर ड्रामे अफसाने ये जो प्लेयर्स हैं या सोसाइटी है रस्म और रवाज है, फिर वो उसके पीछे नहीं भाग गए, वो पीयर प्रेशर का शिकार नहीं हुए, पूरे इत्मीनान के साथ। और नफ्से मुतमईन के मानी फिर क्या हैं? ये नहीं कि न चाहते हुए नहीं, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी दिलेरियों के साथ, और जब दीन हक को जरूरत पेश आई, जिस जिस चीज की जरूरत पेश आई तो फिर कुर्बानी पेश की, कभी माल की, कभी आराम की, कभी अपने वक्त की, कभी अपने जिस्म की कुर्बानी उसके नजराने पेश किए, कभी दुनिया के फायदे सामने नजर आ रहे थे उन फायदों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। और एक बड़ी खूबसूरत बात है नफ्से मुतमईना जो है उस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नफ्से मुतमईना किसका नफ्स होता है? अंबिया का। नफ्से मुतमईना किसका नफ्स होता है? जैसे बकर सिद्दीक रदी अल्लाह का, बड़े मुतमिन रहे अल्लाह के नबी का साथ देने में, पीछे मुड़कर भी ना देखा। और हिजरत का सफर सबसे मुश्किल सफर था, सीरत की किताबों में लिखा है कि सीरत हिजरत के सफर में जब रसूल अल्लाह के सर की कीमत और उनके सर की कीमत क्या लगाई थी, 100 ऊंट, तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह जो थे रसूल अल्लाह को आगे आगे किया हुआ था और खुद पीछे थे कि अगर दुश्मन आए तो मैं हूं, और मैं तो अपना मुहासबा करती हूँ, वॉक पर जाती हूँ ना कुत्ता आ जाता है भाग के साइड पे हो जाती हूँ, कुत्ते से भी डरती हूँ तो साइड पे हो जाती हूँ कि मुझे पाँव ना लगा दे कहीं, वो मुझे नापाक ना कर दे या काट ना ले, है ना। और वो सारे सफर में जब मक्का के काफिर कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे थे और ढूंढते फिर रहे थे, और एक तरफ पीछे पीछे थे, दूसरी तरफ गार में पहुंचे गारे सौर में, तो रसूल अल्लाह को बाहर खड़ा किया, आप बाहर रहिए, और अंदर जाकर सफाई करके जहां कोने खदरे सब कुछ थे, कपड़ा अपना जो पहना हुआ था फाड़ फाड़ के उसको जो है महफूज, मतलब सुराखों को बंद किया। अल्लाह के नबी बहुत थके हुए थे और अपनी गोद में उनका सर रखा हुआ था, और एक सुराख एक दो ऐसे थे कि अब कपड़ा खत्म था नहीं था तो अपने पांव की एड़ियां उसमें दी हुई थी, और किसी ने काटा किसी चीज ने जब तो आंखों से जब आंसू बह गए, आंसू के कतरे रसूल अल्लाह के चेहरे पे गिरे जो आपकी गोद में था, तो आपकी आंख खुली के बकर ये क्या। तो तकलीफ की शिद्दत से आंसू तो बहे हिले नहीं के दो जहान कायनात जो है मेरी गोद में आराम कर रही है, तो उनका आराम ना खराब हो। तो सिद्दीकियत मेराज की सदाकत उसका ऐलान किया और पूरा घर लाके गजवे तबूक के मौके पे अल्लाह के नबी के कदमों में ढेर कर दिया। बकर सिद्दीक तो जन्नत के जिस दरवाजे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो इसको नफ्से मुतमईना कहते हैं, उनको हारने हारने का कभी डर और खौफ नहीं होता, उनको देकर सुकून महसूस होता है। दौलत सामने जब ज्यादा जमा हो जाए तो घबरा जाते हैं कि क्या होगा अब हमारे साथ, ये क्या इतनी दौलत मेरे घर आ गई। तो आइए अल्लाह हमें नफ्से मुतमईन अता करे। नफ्से मुतमईना के मानी समझने चाहिए तो फिर समझ में आती है, सारी गंदगियां सारी रस्में सारी बिद्दतें वो अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं। आए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको नफ्से मुतमईना में शामिल करे। इर्जई लौट चल, इला रब्बी का अपने रब की तरफ, राजिया तम मर्दिया कि तू अपने नेक अंजाम से खुश, राजी राजी खुश खुश किस बात पे, जो तुम्हें रिजल्ट मिला, जो तुम्हें रिपोर्ट कार्ड मिला, जो तुम्हें तुम्हारे अमलों के ऊपर क्रेडिट्स मिले, जो स्टार्स मिले। फद खुली फी इबादी, मेरी प्यारी बहनों सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि अल्लाह किसी को कहे कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। फद खुली फी इबादी, ए नफ्से मुतमईना मेरे बंदों में शामिल हो जा। बंदे तो सारे हैं, वो मेरे नहीं हैं, वो शैतान के हैं, लेकिन रहमान के बंदे वो हैं जो के रहमान की बंदगी करते रहे, अल्लाह की बंदगी। और अल्लाह उनको अपना बंदा कहता है जो अल्लाह के मुती होते हैं, जो अल्लाह के फरमा बरदार होते हैं। तो यहाँ पे उनको कहा जाएगा मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, और ये बहुत क्रेडिट की बात। आप कहते हैं ना प्रिंसिपल अवार्ड, वाइस चांसलर अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड, और बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है कि किसी को अल्लाह के बंदों का रिवार्ड मिल जाए, अवार्ड मिल जाए। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी कुछ लोग तो दुनिया की जन्नतों में गुम रहते हैं ना, अपनी दुनिया अपनी जन्नत नहीं, अल्लाह की जन्नत में। तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत में ढांप ले और हमारे गुनाहों को माफ कर ले, हमारी कोताहियों से दरगुजर करे। या अल्लाह या लतीफ़ या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या करीम या अल्लाह या गफ्फार या सत्तार या अल्लाह, कि तू हम पर रहम कर। सूरत अल बलद है और इसकी 20 आयात एक रुकू, अल्फाज और कलेमात की तादाद 82 है, 82 हुरूफ की तादाद 331 है, 331। इसका मौजू और मजमून जो है वो बहुत ही अहम है। इसमें एक तरफ जो है बताया गया है कि दुनिया में इंसान की हैसियत क्या है, दुनिया की हैसियत क्या है, और फिर दो रवैये और फिर दो रवैयों का अंजाम इस सूरत में बताया गया है। तो सबसे पहले इस सूरत में, सूरत बलद में पहली जो चार आयतें हैं इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरजमीन हरम की, मक्का की कसम खाई है और बनी इस्माइल की इब्तदाई तारीख जो है उसका जिक्र किया है कि वो जिंदगी बड़ी मुशक्कत वाली जिंदगी थी, और फिर किस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से बैतुल्लाह को बरकत मिली और वो पूरा मन इलाका बन गया। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लकद खलकनल इंसान फी कबद। तो जो इसकी पहली चार आयतें हैं ये हमें क्या पैगाम देती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नहीं मैं कसम खाता हूं इस शहर की, बिहाज़ल बलद, इससे मुराद मक्का मुकर्मा है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे और यहीं पे आप पैदा भी हुए। तो अजमत को जाहिर करने के लिए इसकी कसम खाई और हाल ये है कि ऐ नबी इस शहर में तुमको हलाल कर लिया गया है। इसके मानी क्या है कि मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि जो हरम का शहर था जिसमें उस वक्त जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, तो एक वक्त ऐसा था कि कुछ देर के लिए जंग करना और दुश्मनाने दीन को कत्ल करना आपके लिए हलाल हो गया था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए। दूसरे इसके एक असल मानी ये भी हैं कि यानी वो मक्का जहां पे जानवरों को परिंदों को मारना भी मना था, तो अहले मक्का आपके कत्ल की तदबीरें कर रहे थे। आप पढ़ ही चुके हैं सीरत की उसमें क्लासेस में कि अहले मक्का कैसे तदबीरें कर रहे थे और जहां पे परिंदों को जानवरों को भी अमन नसीब है। फिर फरमाया और कसम खाता हूं बाप की और उसकी औलाद की जो उसे पैदा हुई। तो यहां पर बाप से मुराद आदम अलैहिस्सलाम है और उनकी औलाद से मुराद जो है वो पूरी फिर इंसानियत। तो बास कहते हैं कि हर बाप और उसकी औलाद से मुराद है। फरमाया आगे जो आयात हैं आयत नंबर 5 और 7 इसमें अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का जिक्र किया है और ये कि लोग अल्लाह के शुक्रगुजार बने और जो भी अल्लाह ताला ने एहसानात किए हैं उनका फिर सही सही इस्तेमाल करें। ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد। دقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کبد کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، کاف با اور دال۔ کبد کے معنی مشقت اور شدت کے ہیں اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی زندگی جو ہے محنت مشقت والی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، انسانی زندگی مشقت کی زندگی ہے۔ ڈو یو تھنک دی لائف از اے فن؟ ہم لوگ تو یہاں پہ لائف کو فن سمجھتے ہیں نا، ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی، یہی ہے نا ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی۔ دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ تو زندگی کے جو تھوڑے سے دن ہیں ہماری خواہشات میں گزر رہے ہیں لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، پھر فرمایا کہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، مال لبادا، لام با دال، یہ بہت ہی اہم لفظ ہے مال لبادا، اور لام با دال جو ہے اس کے معنی ہیں جیسے یہ جو بال ہے نا یہاں پہ تو وہ لگا کے جیل لگا کے بالوں کو خوب تہیں جمائی جاتی ہیں نا، بعض لوگ کرتے ہیں، تو تہوں والی بال جو جمے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی لبد کہتے ہیں، لبد لبد، یا پھر اون جو ہے وہ اسی طرح جمائی بھی ہو۔ بہت بالوں کو گون سے چپکا کر اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے وہ بال ڈھیر بن جاتے ہیں نا، پھر نوٹوں کا جو نوٹ بہت سے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے کثیر ڈھیر کے لیے۔ اچھا بال گنے نہیں جا سکتے نا، تو انسان اس سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے دولت دی اور دولت جو تھی وہ تم نے صحیح راستوں پہ خرچ کرنی تھی، دوسروں کا بھی حصہ تھا، انفاق کرتے، زکات دیتے، اور تم کہتے ہو میرا مال ہے، اور پھر کہتا ہے انسان یقول اہلک تو مال لبدا، ڈھیروں مال میں نے خرچ کر دیا۔ اور یہاں پہ جو خرچ کرنا ہے اس کے مفسرین نے کئی معنی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، جیسے مثلا اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں ڈالر خرچ کر دینا دکھاوے کے لیے، اور اسی طرح جوئے میں ڈھیروں مال جو ہے اس کو ہار دینا، اور اسی طرح جو ہے تقریبات میں بعض اوقات دکھاوے کے لیے کھانے پکانا، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں دکھاوے کے لیے بہت کرتے ہیں، پھر تصویریں بنتی ہیں، پھر نمائش ہو، اخباروں میں نام آئے، تو یہ ساری چیزیں اس میں، یا یہ کہ فلاں کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، بھلے وہ حرام سے اس میں پیسے آ رہے ہیں، بھلے آپ رشتہ داروں کے حقوق نہیں دے رہے، بھلے یتیم اور بیوہ کے نہیں دے رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے، لیکن باقیوں کے آپ بہت کر رہے ہیں۔ اور کئی گھروں میں ایسا ہے بیوی کو یعنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر باقی ارد گرد جو ہے نا وہ پیسے لٹائے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، دور، اور سمجھ نہیں ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، والدین، بیوی بچے، پھر تھرڈ یعنی اس کی ایک تقسیم ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح رسم و رواج پہ آپ دیکھیں، شادی پر مائیوں کی महफिल जो लगती है उसका खाना, फिर एक मेहंदी की तकरीब उसका खाना, फिर एक तीसरा खाना, इतने खाने। और अब तो ये है कि डेथ पर भी लड़की वाले जेवर लेकर आते हैं, खाना देते हैं, 7 किस्म के फ्रूट। मैं गांव में गई हुई थी किसी की ताजियत करने के लिए, तो पता चला कि इस वाले घर में भी ताजियत कर लूं, तो फल काटा काटा जा रहा है, गरीब लोग हैं, घर वाले दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरा कमरा फ्रूट से भरा हुआ। 7 किस्म का फ्रूट था जो उन्होंने लोगों को उस दिन खिलाना था, 7वां था या कौन सा दिन था। और दूसरे लोग जो रिश्तेदार हैं वो मदद करते हैं, यानी बहन के घर कोई डेथ हुई थी, भाई सपोर्ट करते हैं और 7 किस्म के फ्रूट दिए जा रहे हैं। अकल मारी गई है। कहीं अल्लाह के नबी ने, यानी कहीं डेथ हुई सहाबा सहाबियात ने कोई 7 किस्म के फ्रूट पेश किए थे? तो ये सारी बहुत सी किस्में, क्या वो समझता है उसको किसी ने नहीं देखा? अल्लाह इज वॉचिंग अस। दुनिया ना देखे, दुनिया को पता ना चले, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो दूसरों के हकूक अदा करना, अल्लाह के हकूक अदा करना। और फिर मेरी प्यारी है नो, ये जो आयतें हैं ये बहुत ही अहम हैं। ये आयत नंबर जो 8 से शुरू होती हैं, 8 से लेकर 17 तक, कि ये दौलत से मोहब्बत करने वाले, ये दौलत के पुजारी पुजारी, ये जर परस्त लोग जो थे, अलम नजअलहू आइनैन वलिसानन वशफतैन, क्या हमने उसे 2 आंखें और 1 जबान नहीं दी, देखने वाली 2 आंखें और बोलने वाली 1 जबान दी। वशफतैन और 2 होंठ। तो ये जो जिक्र है आंखों का, जबान का, होंठों का, ये सेंसेस का जिक्र है, इल्म और अकल के जो रिसोर्सेज हैं उनका जिक्र है। यानी हमारी आंखें गाय और भैंस की आंखें नहीं है, बल्कि कैसी आंखें हैं कि खोले तो तौहीद और आखिरत के नजारे समझ में आए, इंसान अल्लाह की तरफ लौट आए, रजू करे। और जबान और होंठ जो हैं ये बोलने वाले सिर्फ आले नहीं हैं, बल्कि ये वो हैं कि बोले तो सोच कर बोले। और इसी तरह हम जो कुछ भी सुनते हैं तो इस पे भी हमारा मामला जो है वो होना चाहिए कि हमारी महफिलें कैसी हैं, हमारी सोहबत कैसी है। तो जबान और होंठ 2 का जिक्र है, क्योंकि होंठ जो है वो जबान जो है होंठों के अंदर होती है ना, तो होंठ हिफाजत करते हैं जबान की, 4 दीवारी है जबान की। और होंठ अगर, जैसे अभी मैंने बताया था पिछले दिनों किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ, उसके होंठ नहीं है, होंठ ना हो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते सही तरीके से, क्योंकि होंठ एक शेप देते हैं ना और फिर आवाज जो है वो निकलती है। तो ये खास तौर पर यहाँ पे आंखें, जबान और होंठों का जिक्र है। और मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं और आप अपनी इन नेमतों का अच्छा इस्तेमाल करें और गौर करें। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया वो किसी पहाड़ के नीचे है और डरता है कि ये पहाड़ इस पर आ गिरेगा, और बदकार यानी मुनाफिक अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया इसकी नाक पर मक्खी बैठी हो, यूं इशारा किया तो वो उड़ गई। तो आइए अपना मुहासबा करें, आइए अपना जायजा लें। और बनू मैया का 5वां खलीफा था अब्दुल मलिक, एक दफा मशहूर ताबई के पास गया हजरत सईद बिन मुसैयब, उनसे कहने लगा अबू मोहम्मद अब मेरी ये हालत हो गई है, अच्छा काम करता हूँ तो इस पे खुशी नहीं होती और बुरा काम करता हूँ तो कोई रंज नहीं होता। तो इस पर सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अब तुम्हारा दिल पूरा मुकम्मल तौर पर जो है वो मर चुका है, मुर्दा हो चुका है। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, एक तो अपनी आंखें और अपनी जबान होंठ जो है इनका अच्छा इस्तेमाल करें, और दूसरी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो अपना मुहासबा करके, तौबा इस्तग़फार करके अल्लाह की तरफ रजू करें। वहदैनहुन नजदैन, और दोनों रास्ते उन्हें दिखा नहीं दिए। तो हदैनहुन नजदैन यानी खैर और शर की तमीज दी, ईमान और कुफ्र की तमीज दी। जैसे आप सूरत दहर में पढ़ चुकी इन्ना हदैनाहु सबील, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा। आगे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि इंसान जो है वो ज्यादतियां क्यों करता है, इंसान शर के रास्ते पर क्यों चलता है, उसकी वजह क्या है। तो यहां पर ये बात जो ये नुक्ता जो है वो समझाया जा रहा है कि नेमतों की लोगों ने नकदरी क्यों की, न शुक्रा इंसान क्यों बन गया। कहा फलक तहमल अकबा, मगर उसने दुश्वार घाटी से गुजरने की हिम्मत ही ना की। जैसे एक तहामा का मतलब होता है जैसे बहुत घुमसान की जंग हो रही है उसके अंदर घुसना, जैसे बहुत भीड़ के अंदर कोई चीज हो। तो यहाँ पे ये लफ्ज जो है दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत करना, यानी अपने आप को सख्त और मुशक्कत तलब काम में डालना। और अकबा ऐसी ऐसी घाटी को, ऐसे दुश्वार रास्ते को कहते हैं जो बुलंदी पर जाने के लिए पहाड़ों में से गुजरता है। तो फरमाया कि दो रास्ते बताए थे, एक बुलंदी की तरफ जाता था मुश्किल मुशक्कत तलब, और दूसरा जो था वो नीचे की तरफ जाता था, वो था नफ्स और ख्वाहिशात की पूजा वाला, शैतान वाला रास्ता। यानी एक रास्ते में बस अपने आप को ढीला छोड़ोगे तो खड्डों में जाके गिरोगे, शैतान की पूजा करोगे। ऊपर बुलंदी पे चढ़ने के लिए तो एक एक कदम संभल कर चलना पड़ता है और मुश्किल से आप बुलंदी चढ़ते हैं ना, तो अपनी शैतान की चालें, नफ्स की तरकीबात, ख्वाहिशात सबको छोड़ना पड़ता है। तो ये है कि नफ्स की बागें ढीली छोड़ दो तो खड्डों में जा गिरोगे, ये रास्ता था एक, और एक था जो कि हदायत का रास्ता। तो हदायत आसान नहीं है। फलक तहमल अकबा, मगर उसने दुश्वार गुजार घाटी में गुजरने की हिम्मत ही ना की। वमा अदरा कामल अकबा, और तुम क्या जानो कि वो मुश्किल घाटी क्या है। अब बताया गया कि ये जो मुश्किल रास्ता है जो तुमने ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, नंबर एक फकूर अकबा, किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना। तो जैसे जेल में बहुत से लोग हैं और परेशान हाल हैं, तो उनकी आजादी में मदद करना। दूसरा औ इतआम फी यौमिन ज़ी मस्गबा, और या फाके के दिन किसी गरीब जो है, ज़ी मस्गबा, मस्गबा भूख के, जैसे भूख के लिए जू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, आम भूख है मस्गबा, आम भूख है जू। और मस्गबा ऐसी भूख को कहते हैं जब पेट बिल्कुल साथ चिपक जाए, बहुत सख्त भूख के लिए। तो इंतहाई भूख के दिन किसी को खाना खिलाना, फाके के दिन खाना खिलाना। तीसरी है यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी करीबी यतीम जो है उसकी मदद, यानी उसको खाना खिलाना। फिर चौथा है औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा, या फिर मिस्कीन को खाना खिलाना। तो प्यारी बहनों, ये जो बात बताई गई, ये पीछे वो कहता है ना कि मैंने माल जो था वो यकूलु अहलकतु माल लुबादा, कि मैंने अपना माल तो ढेरों माल उड़ा दिया। अब बताया जा रहा है माल कहाँ खर्च करो। फक्कू रकाबा, गर्दन की आजादी पर। नंबर दो खाना खिलाने पर। खाना तीन तरह के लोगों को खिलाने के लिए तरकीब दिलाई गई है, नंबर एक भूखे को, नंबर दो यतीम को, और नंबर तीन मिस्कीन को। और फिर क्या करो, सुम्मा काना मिनल लजीना आमनू वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिल मरहमा, और फिर उन दो लोगों में शामिल हो जाओ, नंबर एक जो ईमान लाए, नंबर दो उन्होंने आपस में एक दूसरे को सबर की तलकीन की, और तीसरा है कि एक दूसरे को रहम की, आपस में तलकीन की। तीन बातें हैं, ईमान, एक दूसरे को सबर की नसीहत, और खल्क खुदा पर एक दूसरे को रहम की तलकीन की। तो मेरी प्यारी बहनों, ईमान लाकर अमले स्वाहले बहुत ही अहम बात है। और एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, कहानियां याद रह जाती हैं, वाकयात याद रह जाते हैं और शायद हम में कोई अमल का असूल निकले। तो एक चोर था बगदाद का, बड़ा ही मशहूर चोर था, उसका नाम था इब्ने सबात, और वो यानी इतना पक्का चोर था कि एक हाथ उसका चोरी से कट चुका था, हदें उस जमाने में नाफिज होती थी ना, तो चोरी की हाथ कट गया पर चोरी नहीं छोड़ी। जैसे कहते हैं ना कि यारी ना छोड़े जान चली जाए, गंदी यारी को बाज लोग दोस्तियों को नहीं छोड़ते, जान को दे देते हैं। अच्छा, अब वो फिर बगदाद की गलियों में घूम रहा था और चोरी करना चाहता था, चारों तरफ इधर उधर दौड़ते दौड़ते गलियों में उसको एक हवेली नजर आई, और उसने सोचा ये तो किसी खानदानी रईस की हवेली महसूस होती है। और हवेली के दरवाजे पर, गेट पर जब हाथ मारा तो वो खुली हुई थी, अंदर दाखिल हो गया, बड़ा खुश, बड़ा हैरान, अरे ये तो खुला हुआ है, होंठ भी नहीं हिलाए और दबे पो अंदर चला गया। देखते हैं अंदर कमरे में खजूर की चटाई बिछी है, चमड़े का एक गौ तकिया है और एक गोशे में कपड़े के कुछ थान रखे हैं। बड़ा खुश हुआ, ये तो ताजिर का घर मालूम होता है, कपड़े के थान और बड़े कीमती। सोचा पर जाएंगे कैसे, हाथ भी कटा हुआ है, अकेला हूं, जाऊंगा कैसे। चादर बिछाई, थान रखकर अब उस पर गठड़ी बांधने लगा। बड़ी कोशिश की पर गठड़ी बंद ना सकी। बेचारे का एक ही हाथ था, अब दांतों की मदद से मेहनत कर रहा है कि गठड़ी बंद जाए, क्योंकि लेके भागना चाहता है, तो वो भी ना हो सकी। अब उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अब वो जरा संभल गया, सोचा भाग जाऊं। देखा एक शख्स शमा हाथ में लिए सामने आ गया, बादामी रंग की अबा पहनी थी। चोर की घबराहट देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त ये काम अकेले करने का नहीं है, और फिर आपने तो रोशनी का कोई इंतजाम भी नहीं किया और आप इतने हांप रहे हैं, आइए मैं आपकी मदद कर देता हूं। और यानी मदद करने से पहले कहता है कि दोस्त आओ पहले ना कोई खाने की चीज ढूंढ लेते हैं, मतलब तो मुझे बहुत थके हुए भी लग रहे हो, आराम कर लो और फिर दोनों मिलकर हम ये काम कर लेंगे। अच्छा, वो अजनबी शख्स जो था, चोर ने सोचा कहीं ये घर का मालिक तो नहीं है, ये मुझे मतलब जो है वो चक्कर देकर गया है और पकड़ लेगा अब आकर, तो कोई हथियार ना लेकर आए। अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, वो अजनबी शख्स हाथ में दूध का प्याला लिए हुए आ पहुंचा। चोर को देते बोला, लीजिए पहले तो ये दूध पीजिए। चोर की जान में जान आई और उसने खुश हुआ कि चलो ये मालिक नहीं है और ये भी मेरी तरह का कोई होगा कोई, और हाथ से प्याल दूध लिया, पीने लगा। सोच रहा था कि ये तो मेरी ही तरह का चोर है, इत्तफाक है, हम दोनों ने एक ही घर को ताड़ा। और कहता है, खैर ठीक है। चोर ने प्याला अजनबी के हाथ में वापस दिया और चोर को साथ ही उस प्याला देते हुए ख्याल आया कि अगर ये माल बांटना पड़ गया तो ये तो बहुत थोड़ा होगा। कहता है अजनबी को, ख्याल रखना कि आज के माल में आधा हिस्सा तुम्हारा होगा, मगर आइंदा, यानी आज नहीं होगा मगर आइंदा के लिए जो है, या ये कहा कि आज जो है आधा दे दूंगा, यानी हम ठीक है इकट्ठा करते हैं ये काम, लेकिन आइंदा नहीं तुम्हें आधा मिलेगा, क्योंकि पहले मैं इस घर में आया हूं और तकरीबन मैं सारा काम कर चुका हूं। तो उसने ये कहा कि मतलब आइंदा के लिए तय कर लो, पर आज ये मेरा बनता है, ठीक है तुम मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन मैंने घर ताड़ा, मैं पहले आया, मैंने इसको बांधा और अब तुम मेरे साथ शामिल हो गए। अजनबी ने कहा, ठीक है मैं आइंदा के लिए आपसे मामला कर लेता हूं, अब जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, अजनबी ने कहा। ये कहकर अजनबी ने वो गठड़ी बांधी और एक छोटी सी गठड़ी दूसरी बनाकर इस चोर के सर पर रख दी और बड़ी गठड़ी खुद उठा ली। दो गठड़ियां तैयार की, छोटी सी उसके सर पे दी, बड़ी खुद उठा ली और अब चलने लगा। दोनों जब निकले तो अजनबी की गठड़ी भी बड़ी थी और बोझ उठाने की हिम्मत भी नहीं थी।